चैप्टर 24 धर्म उपमेय और उपमान के बीच रूप गुण कर्म आदि का जो समता दिखाई देती है वही अलंकार शास्त्र की भाषा में वही धर्म है। धीर प्रशांत नायक का एक भेद है, त्याग आदि गुणों से युक्त धीर शांति प्रवृत्ति ब्राह्मण आदि वर्ण के नायक को धीर प्रशांत कहते हैं। धीरोदात धीरोधत धीर ललित और धीर प्रशांत जो चार प्रकार के नायक कहे गए हैं, क्या उनमें जितनी प्रकृति के मनुष्य हो सकते हैं सब आ जाते हैं? रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 95। धीर ललित नायक का एक भेद मृदु कला व्यसनी और निश्चित स्वभाव के नायक को धीर ललित कहते हैं। धीरोदात धीर ललित उदाहरण धीरोदात धीरोधत धीर ललित और धीर प्रशांत जो चार प्रकार के नायक कहे गए हैं, क्या उनमें जितनी प्रकृति के मनुष्य हो सकते हैं सब आ जाते हैं? रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 95। धीरा धीरा वह नायिका जो अपने तानों और झिड़कियों से नायक को दुखी बनाती रहती है वह ज्येष्ठा और कनिष्ठा दोनों ही प्रकार की हो सकती है। उद्दीपन के कुछ वस्तुओं को गिनाने और नायक नायिका के धीरा धीरा धीरोदात इत्यादि भेद निर्दिष्ट करने से दोनों ओर की अनेकता पर पर्दा सा डाल दिया गया। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 95। धीरोदात संस्कृत नाटकों में नेता के चार प्रधान भेदों धीरोदात धीर ललित धीर प्रशांत धीरोधत में से एक। धीरोदात नायक आत्म श्लाघा की भावनाओं से रहित क्षमाशील गंभीर दुख सुख में प्रकृतस्थ स्थिर चित्त स्वाभिमानी और विनीत होता है। उदाहरण भीतरी और बाहरी सौंदर्य रूप सौंदर्य और कर्म सौंदर्य के मेल की यह आदत धीरोदात आदि भेद निरूपण से बहुत पुरानी है और बिल्कुल छूट भी नहीं सकती। चिंतामणि भाग एक पृष्ठ संख्या 219। धीरोधत नायक का एक भेद उग्र अस्थिर स्वभाव अहंकार और दर्प से युक्त आत्म श्लाघा में निरत नायक को धीरोधत कहते हैं। उदाहरण धीरोदात धीरोधत धीर ललित और धीर प्रशांत जो चार प्रकृति के नायक कहे गए हैं, क्या उनमें जितनी प्रकृति के पुरुष होते हैं सब आ जाते हैं? रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 95। धैर्य लोभ मोह भय आदि से उत्पन्न होने वाले मानसिक क्षोभ को दूर करने वाली चित्त वृत्ति धृति है। उदाहरण बड़े बड़े विघ्न उपस्थित होने पर भी अपने व्यवसाय में अविचलित रखने वाली मानसिक व्यवस्था का नाम धैर्य है। रक्तमांसा पृष्ठ संख्या 227। नोट आचार्य शुक्ल अधैर्य को भी संचारियों के स्थान देना उपयुक्त समझते हैं। अपने मत की पुष्टि में उन्होंने कुमार संभव का निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया। हरस्तु किंचित परिवृत्त धैर्य चंद्रो दयारंभ इवाम्बुराशि उमा मुखम बिंब फलाधरोष्ठे व्यापार यामास विलोचनामि। ध्वनि जहाँ वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ में अधिक चमत्कार होता है वहाँ ध्वनि मानी जाती है। ध्वनि के मूल में कहीं लक्षणा होती है कहीं अविधा। इस प्रकार इसके दो प्रधान भेद होते हैं लक्षणा मूला और अविधा मूला। लक्षणा मूला ध्वनि में वाच्यार्थ वांछनीय नहीं होता किंतु अविधा मूला ध्वनि में वाच्यार्थ भी वांछनीय होता है। ध्वनि शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है और इसके विभिन्न दृश्यों से अनेक भेद किए जाते हैं। आचार्य शुक्ल इसका प्रयोग चार प्रकार के अर्थों में करते हैं। वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ की अतिशयता के अर्थ में, प्रधान व्यंग्य के अर्थ में, रसादि की व्यंजना के अर्थ में और वंजित रस आदि के अर्थ में। उदाहरण ध्वनि शब्द का व्यवहार चार पृथक पृथक अर्थों में होता है। जहाँ व्यंग्यार्थ में वाच्यार्थ से अतिशयता हो अर्थात उत्तम काव्य, जिसके द्वारा व्यंग्यार्थ वंजित हो अर्थात प्रधान काव्य, रसादि की व्यंजना और व्यंजित रसादि। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 386। ध्वनिवाद ध्वनि प्रतीयमान अर्थ को काव्य की आत्मा मानने वाला सिद्धांत, जिस काव्य में वाच्य अर्थ के भीतर से एक दूसरा ही रमणीय अर्थ जो वाच्यार्थ से अधिक चमत्कार पूर्ण हो निकले, वह ध्वनि काव्य है। इस सिद्धांत को आचार्य आनंद वर्धन ने व्यवस्थित और पुष्ट किया। ध्वनिवाद के अनुसार काव्य तीन प्रकार का होता है, ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग, चित्र काव्य। ध्वनि काव्य सर्वोत्तम होता है, गुणीभूत काव्य व्यंग होता है, किंतु वह वाच्यार्थ की अपेक्षा कम चमत्कार पूर्ण होता है। चित्र काव्य में शब्द और अर्थ के चमत्कार पर ही ध्यान दिया जाता है, वह अधम काव्य है। ध्वनिवाद भारतीय काव्य चिंतन के चरम उत्कर्ष का द्योतक है। उदाहरण, कई प्रकार के साहित्यवाद साहित्य के बाहर के वाद नहीं हमारे यहाँ भी चले हैं, जैसे रसवाद, अलंकारवाद, ध्वनिवाद, रीतिवाद इत्यादि। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 95।